एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, और ज्ञान गोष्ठी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अनोखे, शायद कुछ लोगों के लिए थोड़े अजीब भी, विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं। सिनोप्के डायोजनीस, नाम सुना है कभी?
डायोजनीस एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिमाग में कई छवियां आती हैं, परंपराओं को तोड़ने वाला, समाज को चुनौती देने वाला।
बिल्कुल, और यही बात उन्हें खास बनाती है। वो सिर्फ कोई दार्शनिक नहीं थे जिन्होंने किताबें लिखीं, उनका तो पूरा जीवन, उनका पूरा का पूरा जीवन ही एक दर्शन था, एक तरह का परफॉर्मेंस आर्ट।
सही कहा, उनका जीवन ही उनका संदेश था, 2500 साल पहले भी और शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक।
तो आज हम इसी की गहराई में जाएंगे, समझेंगे कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनान में ऐसा क्या माहौल था जिसने डायोजनीस जैसे विद्रोही विचारक को जन्म दिया, और उनके विचार आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं।
हाँ, ये समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। चौथी सदी ईसा पूर्व का यूनान एक बड़े बदलाव का दौर था। एथेंस, जो कभी ज्ञान और संस्कृति का केंद्र था,
हाँ, उसका स्वर्ण युग,
हाँ वो स्वर्ण युग अब ढलान पर था। पेलोपोनेसियन युद्ध में स्पार्टा से हार का असर था और उत्तर से मैसेडोनिया की शक्ति बढ़ रही थी। फिलिप द्वितीय, फिर सिकंदर,
सिकंदर महान,
जिसने दुनिया जीतने का सपना देखा। तो मतलब जो पुराने शहर राज्य थे, पोलिस, उनकी पहचान, वो सब हिल रहा था।
बिल्कुल, एक तरह की अनिश्चितता थी। और बौद्धिक जगत में भी प्लेटो की अकादमी थी, अरस्तु का लाइसियम भी था, बड़े बड़े नाम, बड़े विचार, लेकिन दर्शन आम आदमी के लिए भी प्रासंगिक होने लगा था। नैतिकता, अच्छा जीवन कैसे जिए, इन सवालों पर जोर बढ़ रहा था।
अच्छा, तो इस सब के बीच डायोजनीस कहां से आए? मतलब उनका क्या रोल था?
वो किसी बने बनाए रोल में फिट होने वाले थे ही नहीं। वो तो एक तरह से इन सब परिष्कृत बातों, सिद्धांतों के खिलाफ एक सीधी, सच्ची और कभी कभी थोड़ी शॉक देने वाली प्रतिक्रिया थे, मतलब एंटी एस्टैब्लिशमेंट।
हाँ, कह सकते हैं अथीनियन समाज का जो पाखंड था, जो बनावटीपन था, उसके खिलाफ एक खुला विद्रोह। यहीं से सिनिसिज्म की शुरुआत हुई। प्रकृति की ओर लौटो, सादगी से जियो, ये उनका मूल मंत्र था।
और उनका अपना जीवन कहाँ से शुरू हुई ये कहानी?
उनका जन्म सिनाप में हुआ था, काला सागर के तट पर, एक शहर आज के तुर्की में है। पिता बैंकर थे या टकसाल में काम करते थे, हिसेसियस नाम था उनका।
लेकिन फिर कुछ हुआ, उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया है ना?
हाँ, एक बहुत बड़ा मोड़। उन पर और उनके पिता पर आरोप लगा मुद्रा में मिलावट का, मतलब सिक्के खराब करने या शायद जाली सिक्के बनाने का।
ये तो गंभीर आरोप था।
बहुत गंभीर, और नतीजा हुआ निर्वासन, शहर से निकाल दिया गया।
लेकिन डायोजनीस ने इसे एक सजा की तरह नहीं लिया, उन्होंने तो इसे कुछ और ही बना दिया।
यही तो डायोजनीस की खासियत है। उन्होंने बाद में कहा कि डेल्फी के मशहूर ओरेकल, मतलब देववाणी, ने उन्हें आदेश दिया था, टू नोमिस्मा पराखरातिन,
जिसका मतलब था मुद्रा को विरूपित करो।
हाँ, शाब्दिक अर्थ यही था, लेकिन ग्रीक शब्द नोमिस्मा का एक और मतलब भी था, परंपरा, रिवाज, समाज के स्थापित मूल्य।
अच्छा, तो उन्होंने इसकी व्याख्या अलग तरह से की।
बिल्कुल, उन्होंने कहा कि देववाणी का मतलब सिक्के खराब करना नहीं, बल्कि समाज के इन खोखले मूल्यों, इन झूठी परंपराओं को चुनौती देना है, उनको विरूपित करना है, उनकी असलियत दिखानी है।
क्या बात है, मतलब एक आरोप को ही अपने जीवन का मिशन बना लिया, कमाल है। फिर वो एथेंस पहुंचे।
हाँ, इसी निर्वासन के बाद एकदम कंगाल हालत में।
और उन्होंने इस गरीबी को अपनाया?
अपनाया नहीं, इसे सद्गुण का रास्ता माना। ये उनके दर्शन का पहला कदम था, आप कह सकते हैं। एथेंस में उन्होंने एंटिस्थनीज, जो सुकरात के शिष्य थे और खुद भी सादगी पर जोर देते थे, उनका शिष्य बनना चाहा। हालांकि कहते हैं एंटिस्थनीज शुरू में तैयार नहीं थे,
पर डायोजनीस मान गए होंगे।
हाँ, वो डटे रहे, और फिर एथेंस में उनका जो रहने का तरीका था, वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था।
हाँ, मैंने सुना है वो बाजार में रहते थे और घर के नाम पर एक मटका।
हाँ, अगोरा में, यानी बाजार में, और रहने के लिए एक बड़ा सा मिट्टी का जार या मटका, जिसे पिथोस कहते थे, बस वही उनका घर था।
सोचकर ही अजीब लगता है।
हाँ, पर यह शायद समाज के बड़े बड़े घरों पर एक व्यंग भी था। उन्होंने जानबूझकर हर चीज त्याग दी, भीख मांगकर गुजारा करते थे।
लेकिन भीख मांगना, इसे वो बुरा नहीं मानते थे?
नहीं, उनके लिए ये भी दर्शन का अभ्यास था। उनकी तपस्या अस्केसिस थी, खुद को कठोर बनाना, इच्छाओं को जीतना।
और इसी से जुड़ा है उनका वो निर्लज्जता का अभ्यास, अनाइडिया। इसका क्या मतलब था? क्या वो जानबूझकर लोगों को परेशान करते थे?
परेशान करना शायद मकसद नहीं था, मकसद गहरा था। अनाइडिया मतलब समाज ने जो शर्म और हया के नियम बनाए हैं उन्हें तोड़ना।
जैसे?
जैसे सरे बाजार, खाना खा लेना, वहीं सो जाना, या वो काम करना जो आमतौर पर लोग छुपकर करते हैं। उनका तर्क था कि ये नियम प्राकृतिक नहीं है, ये समाज ने बनाए हैं। जो चीज प्रकृति के लिए सहज है उसे करने में शर्म क्यों?
अच्छा, तो वो दिखाना चाहते थे कि ये सब नियम कितने बनावटी हैं।
हाँ, कि सभ्यता के नाम पर हमने खुद को कैसे जकड़ लिया है। वो प्राकृतिक जीवन जीना चाहते थे।
और इसी प्रकृति के करीब जाने की बात से मुझे वो किस्सा याद आया जब उन्होंने अपना कटोरा भी फेंक दिया था।
हाँ बिल्कुल, कहानी मशहूर है कि उन्होंने एक बच्चे को देखा जो अपनी अंजुलि से, मतलब हाथों से पानी पी रहा था।
तो उन्हें लगा कि कटोरा फालतू है।
हाँ, उन्हें लगा कि जब प्रकृति ने हाथ दिए हैं पानी पीने के लिए तो ये कटोरा भी एक गैर जरूरी चीज है, एक विलासिता है, और उन्होंने अपना वो इकलौता कटोरा भी फेंक दिया। ये उनकी ऑटार्किया यानी आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा थी।
आत्मनिर्भरता मतलब किसी चीज पर निर्भर ना रहना।
बिल्कुल, कम से कम जरूरतें रखना ताकि कोई बाहरी चीज, कोई इंसान, कोई हालात तुम्हें गुलाम ना बना सके। सच्ची आजादी चीजों में नहीं, इच्छाओं से आजाद होने में है।
ये आजादी सिर्फ चीजों से ही नहीं थी, शायद पहचान से भी। वो किस्सा जब उनसे पूछा गया कि वो कहाँ के हैं।
हाँ, उनका जवाब था, मैं विश्व का नागरिक हूँ, कॉस्मोपोलिटिस।
कॉस्मोपोलिटिस,
सोचिए जरा, उस जमाने में जब हर कोई अपने शहर, अपनी पॉलिस से पहचाना जाता था, वो कह रहे थे कि मेरी पहचान किसी शहर या देश तक सीमित नहीं है, मैं पूरी दुनिया का, पूरी मानवता का नागरिक हूँ।
ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से।
हाँ, शायद विश्व बंधुत्व की ये पहली दार्शनिक घोषणाओं में से एक थी। और यही आजादी, यही बेपरवाही उन्हें वो हिम्मत देती थी कि वो किसी से भी सच कह सकें बिना डरे,
चाहे सामने सिकंदर महान ही क्यों ना हो। वो किस्सा तो आज भी याद किया जाता है।
हाँ, वो उनकी पैरेसिया यानी बिना डरे सच बोलने की हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत है। कहानी है कि सिकंदर महान, दुनिया जीतने वाला सम्राट, उनसे मिलने आया। डायोजनीज धूप सेंक रहे थे।
हाँ,
सिकंदर ने बड़े रौब से पूछा, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए या मांगो, क्या चाहते हो?
और डायोजनीज ने क्या कहा?
उन्होंने बस इतना कहा, हाँ चाहता हूँ कि तुम जरा एक तरफ हट जाओ, मेरी धूप रोक रहे हो।
स्टैंड आउट ऑफ माई लाइट।
क्या बात है, मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी सामने खड़ा है, कुछ भी देने को तैयार, और ये फकीर सिर्फ अपनी धूप वापस मांग रहा है।
यही तो, ये दिखाता है कि सत्ता, शोहरत, पैसा, इन चीजों की उनकी नजर में कोई कीमत नहीं थी। प्रकृति की सबसे मामूली चीज धूप उन्हें सिकंदर के किसी भी तोहफे से ज्यादा कीमती लगी।
इसी बेबाकी और समाज के नियमों को तोड़ने की वजह से उन्हें वो नाम मिला था, कुत्ता।
हाँ, क्योन, ग्रीक में कुत्ते को क्योन कहते हैं, और इसी से उनके दर्शन का नाम पड़ा सिनिक। लेकिन उन्होंने इस नाम को बुरा नहीं माना।
बुरा क्यों मानते, उन्होंने तो इसे अपनाया। वो कहते थे कुत्ते इंसानों से बेहतर है।
कुत्ते बेहतर हैं क्यों?
क्योंकि वो ईमानदार होते हैं, जो हैं वही दिखाते हैं, कोई दिखावा नहीं, कोई पाखंड नहीं, अपने मालिक के वफादार होते हैं, दोस्त दुश्मन को पहचानते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुश रहते हैं। डायोजनीज को लगता था ये गुण इंसानों से ज्यादा प्राकृतिक और सच्चे हैं।
ये तो साफ है कि उनका टकराव होना ही था। उस समय के जो बड़े दार्शनिक थे जैसे प्लेटो, उनके किस्से भी तो हैं।
हाँ बिल्कुल, प्लेटो जाने जाते थे अपने अमूर्त विचारों के लिए, उनके सिद्धांत फॉर्म्स के लिए। डायोजनीज को ये सब हवाई बातें लगती थी,
तो वो मजाक उड़ाते थे।
हाँ, एक बार प्लेटो ने इंसान की परिभाषा दी, पंख रहित दो पाया जानवर।
पंख रहित दो पाया, अच्छा।
अगले दिन डायोजनीज एक मुर्गे के पंख नोच कर ले आए प्लेटो की एकेडमी में और चिल्लाए, देखो ये रहा प्लेटो का आदमी।
ये तो कमाल का जवाब था, प्लेटो की परिभाषा की धज्जियां उड़ा दी।
बिल्कुल, एक और किस्सा है। प्लेटो किसी सभा में प्यालेपन पर बोल रहे थे, मतलब प्याले का जो अमूर्त आइडिया है।
अच्छा।
डायोजनीज ने बीच में कहा, प्लेटो प्याला तो मुझे दिख रहा है पर ये प्यालापन कहीं नहीं दिख रहा। कहते हैं प्लेटो इतने चिढ़ गए थे कि उन्होंने डायोजनीज को कहा था पागल सुकरात।
पागल सुकरात, इसमें भी कुछ सच्चाई थी क्या? मतलब क्या वो सुकरात से प्रभावित थे?
हाँ, एक तरह से सुकरात ने भी तो यही किया था, लोगों से सवाल पूछना, उनकी मान्यताओं पर सवाल उठाना, सद्गुण को सबसे ऊपर रखना।
हाँ, सही है।
डायोजनीज ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया लेकिन उसे एकदम एक्सट्रीम पर ले गए, ज्यादा नाटकीय, ज्यादा सीधा और समाज के लिए ज्यादा असहज। वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो जीते थे अपने दर्शन को।
तो क्या उनके इन विचारों का, उनके इस जीने के तरीके का बाद के दर्शन पर कोई असर हुआ?
हाँ, बहुत गहरा असर हुआ। स्टोइकवाद का नाम सुना होगा?
हाँ, स्टोइक्स, मार्कस ऑरेलियस वगैरह।
हाँ, तो स्टोइकवाद के जो संस्थापक थे ज़ीनो ऑफ सिटियम, उन्होंने डायोजनीज के ही एक शिष्य क्रेट्स ऑफ थीब्स से सीखा था।
अच्छा।
स्टोइक्स ने सिनिकों के कई विचार लिए, जैसे सद्गुण ही सबसे बड़ी अच्छाई है, प्रकृति के अनुसार जीना चाहिए, भावनाओं पर काबू रखना, लेकिन उन्होंने इन विचारों को थोड़ा पॉलिश किया, समाज के लिए ज्यादा स्वीकार्य बनाया। तो कह सकते हैं कि स्टोइकवाद की जड़ें सिनिसिज्म में हैं।
तो डायोजीनीस की विरासत क्या मानी जाए, इतिहास ने उन्हें कैसे याद रखा?
उनकी छवि हमेशा से थोड़ी मिलीजुली रही है। कुछ लोग उन्हें महान ऋषि मानते हैं, आजाद रूह वाला, कुछ उन्हें सिर्फ एक पागल, एक विद्रोही मानते हैं जो बस नियम तोड़ना जानता था। रोम के लोग उनकी सहन शक्ति, उनकी सादगी के बड़ी इज्जत करते थे, और बहुत बाद में ईसाई धर्म के जो शुरुआती तपस्वी थे जिन्होंने दुनिया का मोह छोड़ा, उन्होंने भी डायोजीनीस में प्रेरणा देखी।
और आज के जमाने में डायोजीनीस कहाँ है?
आज वो कई चीजों के प्रतीक बन गए हैं, काउंटर कल्चर, एंटी कंज्यूमरिज्म, मिनिमलिज्म,
हाँ, सादा जीवन,
हाँ, और रेडिकल इंडिविजुअलिज्म। उनका जीवन आज भी हमें समाज के दबाव, दिखावे और ये जो चीजें इकट्ठा करने की होड़ है ना,
हाँ बिल्कुल,
उस पर सवाल उठाने के लिए उकसाता है।
लेकिन एक बात है, आज जब हम किसी को सिनिक कहते हैं तो मतलब होता है कोई निराशावादी, हर चीज पर शक करने वाला, पर डायोजीनीस का सिनिसिज्म तो ऐसा नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। उनका सिनिसिज्म निराशावाद नहीं था, वो तो सच्चाई और ईमानदारी की एक बहुत कठोर खोज थी। वो इंसान की असलियत को, प्रकृति के साथ उसके असली रिश्ते को फिर से पाना चाहते थे, चाहे उसके लिए समाज के सारे आराम, सारे नियम तोड़ने पड़े। ये मुश्किल रास्ता था, पर उनके लिए यही सच्चा जीवन था।
उनके कुछ और किस्से या बातें भी तो हैं जो उनके इस दर्शन को दिखाती हैं, जैसे वो लालटेन लेकर घूमने वाली बात।
हाँ, वो भी कमाल है। कहते थे, मैं एक ईमानदार आदमी की तलाश में हूँ।
आई एम लुकिंग फॉर अ मैन।
और ये कहते हुए दिन के उजाले में जलती लालटेन लेकर एथेंस की सड़कों पर घूमते थे।
दिन में लालटेन?
हाँ, ये भी उनका एक तरीका था कहने का कि इस बनावटी समाज में एक खरा सच्चा इंसान ढूंढना इतना मुश्किल है कि दिन में भी लालटेन जलानी पड़ती है।
या उनका वो कहना कि जिसके पास सबसे कम है वही सबसे ज्यादा संतुष्ट है।
हाँ, ये उनकी आत्मनिर्भरता और ऑटार्किया का निचोड़ है। असली दौलत चीजों में नहीं, मन के संतोष में है, और संतोष आता है इच्छाओं को कम करने से।
और सत्ता पर भी उनकी टिप्पणी थी, बड़े चोर छोटे चोर को पकड़वाते हैं।
बिल्कुल, समाज का दोहरापन देखिए कि जो बड़े घोटाले करते हैं, जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, वो तो बच निकलते हैं, और छोटे मोटे चोरों को सजा देकर अपनी ईमानदारी का ढिंडोरा पीटते हैं।
जाहिर है, इतने रेडिकल विचारों और कामों की आलोचना तुम हुई होगी।
हाँ बिल्कुल हुई। उनके अपने जमाने में प्लेटो जैसे लोगों ने उन्हें असभ्य कहा कि ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए करते हैं, ये समाज के लिए खतरनाक हैं। उनके कई कामों को लोग अभद्र मानते थे।
और एक मुश्किल ये भी है कि उन्होंने खुद कुछ लिखा नहीं।
हाँ, ये बड़ी दिक्कत है। हम उनके बारे में जो जानते हैं वो दूसरों की लिखी कहानियों, किस्सों से जानते हैं, डायोनीस, लायर्टियस जैसे लेखकों से, और इन कहानियों में कितना सच है, कितना बाद में जोड़ा गया, ये कहना मुश्किल है।
और आज के जमाने में भी सवाल उठते होंगे।
हाँ, उठते हैं कि क्या वो सच में गहरे दार्शनिक थे या सिर्फ एक शॉक आर्टिस्ट। क्या उनकी जीवन शैली एक तरह से परजीवी नहीं थी? वो रहते तो उसी समाज की भिक्षा पर थे जिसे वो नकार रहे थे।
ये भी सोचने वाली बात है।
और कुछ लोग उनके विचारों में स्त्री विरोधी बातें भी देखते हैं, और ये सवाल भी कि उनका जो व्यक्तिवादी अराजकतावाद है, क्या वो समाज चलाने का कोई रास्ता हो सकता है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है। इतिहास और किंवदंती बहुत ज्यादा घुल मिल गए हैं।
तो कुल मिलाकर देखें, डायोजीनीस एक पहेली की तरह है, एक ऐसे विचारक जिन्होंने लिखा कम, जिया ज्यादा, और अपने जीने के तरीके से ही उन्होंने समाज की जड़ों पर सवाल खड़े कर दिए, हमें सोचने पर मजबूर किया कि खुशी क्या है, आजादी क्या है, एक सार्थक जीवन क्या है।
उनका सबसे बड़ा योगदान शायद यही है कि उन्होंने दिखाया कि दर्शन सिर्फ दिमाग की कसरत नहीं है, ये जीने का तरीका भी हो सकता है, सड़कों पर, बाजार में, आम लोगों के बीच। वो हर जमाने के लिए एक गॉड फ्लाई हैं, वो मक्खी जो समाज को चैन से सोने नहीं देती, उसे उसके पाखंड याद दिलाती रहती है।
बिल्कुल।
और आज भी जब हम ग्लोबलाइजेशन, असमानता, पर्सनल फ्रीडम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सवालों से जूझ रहे हैं, डायोजीनीस की बातें कहीं ना कहीं गूंजती जरूर हैं।
और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं, डायोजीनीस से ही जुड़ा हुआ। आज की दुनिया में जो इतनी जटिल है, इतनी दिखावे वाली है, क्या डायोजीनीस जैसी सादगी, ऐसी ईमानदारी संभव है? और अगर हम समाज के नियमों को, मूल्यों को चुनौती देना चाहें भी, तो कैसे, जबकि हम खुद भी तो इसी समाज का हिस्सा है? इस पर सोचिएगा जरूर।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।